नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दिनेश कुमार सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर। आज शाम वे एकता नगर में 280 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। महाराष्ट्र में एक ही चरण और झारखंड में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच जारी। दिवाली के अवसर पर पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल, बाजारों में रौनक। हमास ने गाजा में अस्थायी युद्ध विराम का रखा प्रस्ताव। जर्मनी में हाइलो ओपन 2024 बैडमिंटन में मालविका बंसोड और रचिता रामराज पहुंचे दूसरे दौर में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर हैं। वे आज शाम एकता नगर में 280 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न बुनियादी सुविधाओं और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी आरंभ 99वें आधारिक पाठ्यक्रम के 6वें चरण में प्रशिक्षु अधिकारियों को भी संबोधित करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में पर्यटन की सुविधाओं में सुधार करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज विश्व एकता दिवस 2024 की पूर्व संध्या पर नई दिल्ली में एकता की शपथ दिलाई। स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव, स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव और वरिष्ठ अधिकारियों ने शपथ ली। विश्व एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत का सम्मान करना है, जिनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने राष्ट्र को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य में दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह आने वाले दिनों में झारखंड में चुनाव रैलियां करेंगे। निर्वाचन आयोग ने झारखंड सरकार को देवघर के पुलिस अधीक्षक अजीत पीटर डुंगडुंग को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। आयोग ने उनसे अपने निकटतम कनिष्ठ अधिकारी को प्रभार सौंपने को कहा है। आयोग ने उन्हें चुनाव संबंधी सभी जिम्मेदारियों से हटा दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आज नामांकन पत्रों की जांच हो रही है। 4 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। हमारी संवाददाता ने बताया कि राज्य में मतदान 20 नवंबर को होगा। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना 23 नवंबर को होगी। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने आज कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने पिछले 1 वर्ष में 900 से ज्यादा बचाव कार्यों को सफलतापूर्वक संचालन किया और 3,000 से अधिक लोगों को बचाया है। नई दिल्ली में शहीद स्मृति समारोह के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री मोहन ने कहा कि NDRF नागरिकों के भरोसे और विश्वास का प्रतीक बनकर उभरा है। दिवाली के अवसर पर पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है। बाजारों में रौनक बढ़ गई और घरों को सुरुचिपूर्ण तरीके से सजाया जा रहा है। दीपावली की पूर्व संध्या पर अयोध्या आज भव्य दीपोत्सव की सभी तैयारियों के लिए पूरी तरह तैयार है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में पहला दीपोत्सव समारोह होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसमें 1100 बटुक और 147 संत एक साथ सरयू के घाट पर सबसे बड़ी आरती करेंगे। दीपोत्सव के अवसर पर राजस्थान में भी रौनक है। आज रूप चतुर्दशी मनाई जा रही है। मंदिरों, बाजारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रंग बिरंगे सजावटी सामान, दिए और LED की जगमगाहट सभी का ध्यान आकर्षित कर रही है। कई स्थानों पर परंपरागत रंगोली आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। तमिलनाडु में दीपोत्सव पर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य परिवहन विभाग ने लोगों के लिए बसों से यात्रा करने के लिए कई व्यवस्थाएं की हैं और टिकट की कीमत कम करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने पटाखे जलाने के लिए परामर्श जारी किया है। पंजाब में जेल विभाग दिवाली के अवसर पर कैदियों द्वारा हाथ से बनाए गए उत्पादों को बाजारों में बेचकर उन्हें खुश और सम्मानित महसूस करा रहा है। इससे होने वाले लाभ का 40% हिस्सा संबंधित कैदियों के खाते में जमा किया जाता है। उधर अमेरिका में राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस में भारत अमेरिका संबंधों में भारतीय अमेरिकियों के योगदान का सम्मान करते हुए दीपावली उत्सव का आयोजन किया गया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने इस आयोजन की प्रशंसा की और दीपावली के महत्व और भारतीय अमेरिकियों के अमूल्य योगदान का उल्लेख किया। एक ऐतिहासिक घटनाक्रम में हिंदू त्यौहार दीपावली मनाने के लिए न्यूयॉर्क शहर के स्कूल 1 नवंबर को बंद रहेंगे। यह पहली बार है जब शहर के स्कूलों में दीपावली की छुट्टी घोषित की गई है। इस बीच भारतीय रेलवे दीपावली और छठ पूजा के त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए हजारों विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। इस वर्ष रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 2,500 अतिरिक्त रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 2,500 अतिरिक्त रेलगाड़ियां चला रहा है। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की थी कि पिछले साल संचालित 4,500 रेलगाड़ियों की तुलना में इस साल विशेष रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाकर 7,000 कर दी गई है। रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं के बारे में उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा कि रेलवे ने भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए कई प्रबंध किए हैं। केरल सरकार ने कासरकोड के नीलेश्वरम के पास वीरार काऊ मंदिर में एक कार्यक्रम के दौरान आग लग जाने की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित किया है। इस अग्निकांड में 150 से अधिक लोग घायल हुए थे। सोमवार की रात हुई इस घटना में मंदिर स्थल के पास बने पटाखों के स्टोर में विस्फोट हुआ। पुलिस ने बताया कि आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच हो रही है और मंदिर प्रशासन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र में उल्लासनगर के मंगलमूर्ति मार्केट के सामने स्थित न्यू गजानन मार्केट में आज सुबह भीषण आग लग गई। आग कपड़े की दुकान से शुरू हुई। दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आपातकर्मी आग पर काबू पाने के प्रयास कर रहे हैं। आसपास के सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने जम्मू के अखनूर सेक्टर के बट्टल इलाके में एक मुठभेड़ के दौरान भारी मात्रा में गोला बारूद और युद्ध सामग्री का पता लगाया है। कल किए गए अभियान में 3 भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों को मार गिराया गया। सोमवार को शुरू हुई मुठभेड़ में भीषण गोलीबारी के बाद आतंकवादियों को मार गिराया गया। घुसपैठ के पीछे कौन सा गिरोह था इसकी जांच की जा रही है। जम्मू में बढ़ते आतंकवाद को देखते हुए सुरक्षा बलों ने मुगल रोड और इससे जुड़े मार्गों पर सतर्कता और जांच बढ़ा दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुगल रोड कश्मीर घाटी को जम्मू प्रांत के राजौरी और पुंछ तथा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 से भी जोड़ता है। हमास ने कहा है कि गजा पट्टी में अस्थायी युद्ध विराम के लिए किसी भी समझौते या विचार के प्रति उसके विकल्प खुले हैं। कल हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि समझौतों या विचारों में गजा पट्टी से इजरायली सेना की वापसी, नाकाबंदी हटाना, राहत सहायता और आश्रय के प्रावधान सहित कैदियों की अदला बदली का समझौता भी शामिल होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने रविवार को फलिस्तीनी कैदियों के बदले 4 इजरायली बंधकों को छोड़ने के लिए गजा में 2 दिन के युद्ध विराम प्रस्ताव की घोषणा की थी। इसके लिए पिछले कुछ महीनों में दोहा और काहिरा में कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन संघर्ष को समाप्त करने के लिए कोई अस्थायी समाधान नहीं हो पाया है। इस बीच अमेरिका ने कहा कि वह इसराइल में उस कानून को लेकर बेहद चिंतित है जो फलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा चलाए जा रहे अभियानों के संचालन पर प्रतिबंध लगाएगा। जर्मनी में हाइलो ओपन 2024 बैडमिंटन में मालविका वंशोई और रचिता रामराज दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के पहले राउंड में भारत की मालविका वंशोट ने बुल्गारिया की हिस्टोमिरा पोपोवस्का को सीधे सेटों में 21-6, 21-17 से हराया। एक अन्य मुकाबले में भारत के ही रचिता श्री ने चीनी ताइपी के यू चेन हुई को 21-13, 21-19 से पराजित कर दिया। तमिलनाडु में स्वतंत्रता सेनानी पसुमपोन मथुराम लिंगर का 116वां जन्मदिन गुरु पूजा के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने आज उनके स्थान पर पुष्पांजलि अर्पित की और कहा कि मथुराम लिंगर महान योद्धा थे और उनके सम्मान में राज्य सरकार ने कई स्मारक बनवाए हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने भी मथुराम लिंगर को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में उनके साहस को याद किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दोपहर 1 बजे दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक 296 दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल, कराईकल और माहे में अगले 3 दिनों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा कि कल दक्षिणी भित्री कर्नाटक में भी तेज वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और तेलंगाना में भी हल्की या मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 1 हफ्ते के दौरान देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा। जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग ने संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 का परिणाम घोषित कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि चयनित उम्मीदवारों को मेडिकल परीक्षण के लिए बुलाया गया है। चयन सूची के अनुसार संजीव कुमार ने 1,089 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया है, जबकि इकरा फारूक ने 1,078 अंकों के साथ दूसरा और वसुधा शर्मा ने 1,075 अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। दीपावली की पूर्व संध्या पर अयोध्या आज भव्य दीपोत्सव की तैयारियां कर ली गई हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य मंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।